अच्छी आदतें।
श्रोताओ, कार्यक्रम अच्छी आदतें में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास, मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। एक अच्छे जीवन के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आपको सही तौर से ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करना पड़ता है और बुरी आदतों को त्याग कर अच्छी आदतें अपनानी पड़ती हैं। पिछली कड़ी में हमने उल्लेख किया था कि सफलता हासिल करने का सबसे पहला सिद्धांत डिसिप्लिन है। कोई भी इंसान अपने जीवन में डिसिप्लिन के जरिए अपने कामों का बेहतरीन नतीजा हासिल कर सकता है। इसी तरह से डिसिप्लिन से कामों को सही ढंग से अंजाम देने का मौका मिलता है। डिसिप्लिन सीखा जा सकता है और प्रैक्टिस से इसमें निखार लाया जा सकता है। जिंदगी में डिसिप्लिन को मजबूत बनाने के लिए प्लानिंग और सही समय पर काम अंजाम देने की ज़रूरत होती है। इंसान को नई आदतें अपनाने और बुरी आदतें छोड़ने में वक्त लगता है, लेकिन एक बार जब किसी अच्छे काम की आदत पड़ जाती है तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है और इंसान इसके प्रभाव को अपने जीवन में महसूस करता है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आपके पास अपनी जिम्मेदारियों और कार्यों को पूरा करने के लिए एक निर्धारित समय होता है और ये कि आपकी प्लानिंग सिर्फ आपके दिमाग में ही नहीं होनी चाहिए बल्कि व्यवहारिक रूप से वो ज़मीन पर दिखनी भी चाहिए। जीवन में डिसिप्लिन का महत्व क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इसलिए बच्चों को बचपने से ही ये सिखाया जाना चाहिए और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते रहे उसकी उम्र के हिसाब से इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि बच्चा इस आदत को ग्रहण कर ले। बचपन में इस पर ध्यान दिए बिना युवाओं से इसकी अपेक्षा करना सही नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे में अनुशासनहीनता की आदत हो जाती है तो फिर इस आदत को ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। इस संदर्भ में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किसी की आदत को छुड़ाना एक चमत्कार जैसा होता है। बच्चों को जीवन कौशल सिखाना माता पिता का कर्तव्य है और उसके बाद स्कूल में ये अध्यापकों की जिम्मेदारी है। बच्चों में अनुशासन लाने के लिए गुस्से और धमकी से बचना चाहिए। इस्लामी परंपराओं में क्रोध की बहुत निंदा की गई है और इसे सभी बुराइयों की जड़ करार दिया गया है। जब आप अपने बच्चे में अनुशासन पैदा करने के लिए नियम बनाते हैं तो उन नियमों को लागू करने में दृढ़ता से काम लेना चाहिए और झिझक और कश्मकश से बचना चाहिए। अच्छी आदतें अपनाने के लिए समय की आवश्यकता होती है और ये तुरंत या एक बार में संभव नहीं है। अनुशासन सिखाने के लिए एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु के जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है वह है धीरे धीरे व्यवहार में सुधार का सिद्धांत। अच्छी आदतों को अपनाने में समय लगता है जबकि इंसान बुरी आदतें जल्दी सीख लेता है, इसलिए अच्छी आदतें सिखाने के लिए समय और धैर्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ईश्वरीय दूत के जो समाज सुधारों के लिए भेजे गए थे उन्होंने लोगों को एक ही बार में नियम नहीं सिखा दिए और एक ही समय में समस्त उपदेश नहीं दे दिए, बल्कि उन्होंने एक एक करके कदम आगे बढ़ाया और सुधारों के लिए भूमि प्रशस्त की। सबसे पहले बच्चों को अनुशासन की ज़रूरत का एहसास होना चाहिए, उसके बाद उन्हें इसका अभ्यास करना चाहिए ताकि धीरे धीरे ये आदत में बदल जाए। इस आदत को मजबूत बनाने के लिए इसे निरंतर जारी रखना चाहिए। इस संदर्भ में हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कदम कदम फिर काम को ख़त्म करने पर ध्यान, काम ख़त्म होने पर धैर्य रखना। बच्चों को किसी भी ऐसे काम का आदि बनाने से बचना चाहिए कि जिसमें किसी बाहरी कारक की भूमिका हो। इसलिए कि इंसान जब कोई काम केवल आदत के अनुसार करता है तो उस काम की अच्छाई और उसका गुण समाप्त हो जाता है। निरंतरता से किए जाने वाले किसी भी काम और किसी बाहरी कारक के कारण किए जाने वाले निरंतर काम की मौलिकता में अंतर है। ये बात सही है कि इंसान को कोई भी काम इच्छा शक्ति और बौद्धिक निर्णयों के आधार पर अंजाम देना चाहिए, लेकिन किसी भी ऐसे काम को कि जिसमें बाहरी कारक की कोई भूमिका नहीं है लेकिन इसके बावजूद निरंतरता से उसे अंजाम दिया जाता है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि काम को अंजाम देने वाला इच्छा शक्ति एवं बौद्धिक निर्णय के आधार पर उसे अंजाम दे रहा है और उस काम के गुण एवं मूल्य उसके दृष्टिगत हैं। बच्चे किसी मोम की भांति होते हैं, आप जिस आकृति में उन्हें ढालना चाहेंगे वो ढल जाते हैं। यही कारण है कि दुनिया भर में हमेशा से माँ बाप, शिक्षकों, विद्वानों और धर्मगुरुओं का यही प्रयास रहा है कि परवरिश की सही शैली का चयन करके बच्चे की क्षमताओं को इस प्रकार विकसित करें कि व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र और यहाँ तक कि पूरी मानवता के लिए उपयोगी हों। अभी कुछ वर्षों पहले की ही बात है, कहा जाता था कि बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो कोरे कागज़ की तरह होता है, उस पर आप जो चाहें इबारत लिख दें। जन्म के समय वो माँ के दूध से अतिरिक्त हर चीज़ से अपरिचित होता है, अर्थात प्राकृतिक रूप से वो जो दो एक बातें सीख कर आता है उसके अतिरिक्त उसे सब कुछ इसी दुनिया में आकर सीखना होता है। स्पष्ट है कि इस आधार पर बच्चों की परवरिश की आधारशिला भी उनके जन्म के बाद या उनके किसी हद तक समझदार होने के बाद ही रखी जाती थी, और ये कोई केवल आम धारणा नहीं थी बल्कि विशेषज्ञों एवं चिकित्सकों का भी यही मानना था। लेकिन हालिया शोधों ने इस धारणा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। चिकित्सा विशेषज्ञ अपने शोध कार्यों में इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि शिशु गर्भाशय में जो कुछ समझता है जन्म लेने के बाद उसे याद रखता है और उसकी ये जानकारी बाहरी दुनिया को समझने में उसकी मदद करती है। आज मेडिकल विशेषज्ञों का कहना है कि गर्भावस्था की अंतिम तिमाही में अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझने के लिए शिशु अपनी इंद्रियों का प्रयोग करने लगता है, बल्कि संभावित रूप से इससे पहले ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिनलैंड की वैज्ञानिक मिन्ना हॉटिलेनन का कहना है कि माँ के गर्भ में शब्दों को सुनकर शिशु में उन्हें याद रखने की क्षमता विकसित हो जाती है। वे कहती हैं कि शिशु जब इस दुनिया में कदम रखता है तो उसका मस्तिष्क किसी कोरे कागज़ की भांति नहीं होता, बल्कि वो ये जानता है कि उसके माँ बाप और परिजन किस तरह बात करते हैं। हेलसिंकी विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हॉटिलेनन कहती हैं कि शोध ये दर्शाता है कि जीवन के बहुत ही प्रारंभिक चरण में शिशु का मस्तिष्क आवाज़ों को बहुत अच्छी तरह समझने और उनमें अंतर करने लगता है। हॉटिलेनन का मानना है कि ये भाषा सीखने या आवाज़ों को पहचानने के बहुत ही प्रारंभिक चिन्ह हैं। मेडिकल विशेषज्ञों के मुताबिक शिशु गर्भ में ही बहुत सी चीज़ें सीखने की क्षमता रखता है और जन्म लेने के बाद वो उन चीज़ों को याद रखता है कि जो उसने गर्भ में रहते हुए सीखी थी। उदाहरण स्वरूप, अगर कोई गीत या किसी किताब का कोई भाग उसके लिए पढ़ा जाए तो वो जन्म लेने के बाद उसे याद रख सकता है। इन नए शोधों से ये स्पष्ट हो गया कि ये आम धारणा कि मनुष्य जन्म लेने के बाद ही सब कुछ सुनता और समझता है और दुनिया में कदम रखने के बाद ही उसे सब कुछ सीखना है, गलत है। जैसा कि वैज्ञानिकों ने माँ के गर्भ में शिशु के जीवन के विभिन्न चरणों में उसकी क्षमताओं का उल्लेख किया है, उसके मद्देनज़र मनुष्य के पालन पोषण का सिलसिला माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है और माँ बाप को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए शिशु के जन्म का इंतजार नहीं करना चाहिए। श्रोताओं, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है।